हमने पिछले अध्याय में ये देखा कि सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। वो 6 प्रश्न इस प्रकार है कि सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है कलयुग में, स्थिति कलयुग की स्थिति देखते हुए सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान के अवतारों का क्या प्रयोजन है। चौथा, पुरुष अवतारों के बारे में सुनना चाहते थे। पांचवा, लीला अवतारों के बारे में सुनना चाहते थे। और छठवां प्रश्न था कि धर्म ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम प्रकट होने के बाद धर्म ने किसका आश्रय ग्रहण किया है। तो ये 6 प्रश्न जब शौनक आदि ऋषि ने सुना तो अभी वो उसका जवाब देंगे। किसी भी वक्ता के लिए अगर श्रोता प्रश्न पूछता है तो उसके लिए एक हर्ष उल्लास की बात होती है कि इससे ये पता चलता है कि सुन रहे हैं लोग, हाँ, या फिर उनका आदर सत्कार हो रहा है, अच्छे से ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि का प्रश्न सुनकर अभी सुतो गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। सुतो गोस्वामी बहुत ही हर्षित हुए उनके प्रश्न सुनकर, और वे सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम करते हैं। हम लोग जो मंगलाचरण करते हैं वास्तव में हम अपने गुरु महाराज को, श्रील प्रभुपाद जी को और समस्त परंपरा को प्रणाम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सुतो गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम कैसे करते हैं कि जिस समय भी सुखदेव गोस्वामी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुदराम लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे गए और चिल्लाने लगे, बेटा बेटा रुको रुको। और जब वे वन में चले गए तो उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, और तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी जिस जो सबके हृदय में निवास करते हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ। तो प्रश्न उठ सकता है कि यदि सुखदेव गोस्वामी अगर कहाँ चले गए थे, वन में चले गए थे, तो भागवत उन्होंने वेदव्यास से कब सुना और कैसे सुना, प्रश्न है। इसका उत्तर है सुखदेव गोस्वामी खुद देते हैं। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के नवे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परिनिश्चितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहित चेत राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। वे कहते हैं कि मेरी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण स्वरूप में स्वाभाविक रूप से थी, लेकिन जब मैंने भगवान की कथाओं के विषय, भगवान के लीलाओं के विषय में सुना, तब मैं उनसे और आकर्षित हुआ और मैं वापस दोबारा लौटा वापस और मैंने अपने पिताजी से भागवत सुना। तो जब वेदव्यास जी सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे जा रहे थे और वे असफल हुए अपने बेटे को वापस लाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों को अपने शिष्यों को सुना दिया और कहा कि जाओ गाओ। कौन से 2 श्लोक थे? एक तो अहो बकियम स्तन कालम कूटम और दूसरा वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो करणिकारम। इन 2 श्लोकों को जब वेदव्यास ने शिष्यों को भेजा और जब वो गाने लग गए, जंगल में चिल्ला चिल्लाए गाने लग गए या फिर मधुर गाने से जैसी गा रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी ने यह सुना ये श्लोक कि पूतना जैसी राक्षसी को जिसने मातृ गति दे दी और उनके वराहपीडम नटवर वपु का जो उनका सौंदर्य का जो वर्णन सुना सुखदेव गोस्वामी ने, तब ब्रह्मानंद में स्थित सुखदेव गोस्वामी ने अपना वैराग्य को त्याग दिया और वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत सुनने के लिए फिर से लौट पड़े, उनके आश्रम में चले गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, वही श्रीमद् भागवत जो मैंने सुना है पिताजी से, वो मैं तुमको सुना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के प्रेमी भक्त हो, भगवान के प्रेमी भक्त हो, और इसको यदि श्रद्धा पूर्वक सुना जाए, इसको यदि क्या किया जाए, श्रद्धा पूर्वक सुना जाए, तो उसकी चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में लग जाएगी, संसार चित्त हट जाएगा और कृष्ण में स्थित हो जाएगा। इसको भागवत के लिए क्षमतापूर्वक सुना जाए और अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, शीघ्रातिशीघ्र जल्दी प्रेम प्रेम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक सुनने से। यह श्रीमद् भागवत जो है वो अत्यंत गोपनीय पुराण है, अत्यंत गोपनीय है, रहस्यात्मक है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराएगा, क्योंकि मैंने हमने पहले चर्चा की थी कि ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान ही है, तो इसके संपर्क में रहने से हम श्री कृष्ण के संपर्क में ही है। तो ये समस्त वेदों का सार है। और संसार में जो फंसे हुए लोग हैं, संसार में हम लोग हमारे भारी दुख से हम लोग तिलक लगाते, कंठी लगाते हैं, लेकिन हमारे संसार की जो आसक्तियां है तो हम ही लोग जानते हैं कि हृदय हमारे हृदय की क्या स्थिति है, कितनी हम लोग घोर अंधकार में फंसे हुए हैं। तो हमें एक जंक्शन चाहिए होता है। अभी उदाहरण देता हूँ, महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि एक ट्रेन है, मान लीजिए कि वो उसको जगन्नाथ, एक ट्रेन है जो मुंबई से पुरी जाती है, तो विजयवाड़ा में पहुंचकर वो ट्रेन अपना डायरेक्शन बदलती है। तो डायरेक्शन कैसे बदलता है, इंजन को आगे से निकाल कर पीछे लगा दिया जाता है और फिर वो डायरेक्शन उसका चेंज होता है। तो हमारी जो स्थिति है, हम लोग पूरी तरह से हमारे जो ट्रेन है बहुत सांसारिक कार्यों की तरफ, सांसारिक आसक्तियों की तरफ जाती है, हमारा चित्त उसी में लगा हुआ है। हमें एक जंक्शन चाहिए जहाँ पर हमारा चित्त, हमारा जो इंजन है वहाँ से हटाकर कृष्ण के डायरेक्शन की तरफ लग जाए। तो ये श्रीमद् भागवत उसी वो जंक्शन की तरह है। यह साधुओं का संग या श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन ये उस जंक्शन की तरह है जिसके संपर्क में आ जाने से हमारा इंजन संसार के डायरेक्शन की तरफ से निकल कर कृष्ण की तरफ जुड़ जाएगा और हम लोग बहुत स्पीड से भगवान की तरफ चले जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत के संपर्क में आने से ये चीज हो जाएगी, हमारा कृष्ण में अनन्य प्रेम हो जाएगा। वास्तव में इस संसारिक जीवों पर कृपा करने के लिए ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत सुनाया था। फिर ये जो फेमस जो श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मन्दिरे। तो यहाँ पर हम लोग सुत गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत स्टार्ट करने से पहले हमें भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए, सरस्वती माता को प्रणाम करना चाहिए, वेदव्यास जी को प्रणाम करना चाहिए। इससे इनकी कृपा हमें सहज प्राप्त हो जाएगी, हमें इस भागवत महापुराण को समझने में सहायता होगी। यहाँ पर हमने जब पिछले अध्याय में चर्चा की थी उसमें एक श्लोक था, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। तो मैंने उस समय कहा था कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते कुछ आचार्यों को ये मानना है कि महामुनि जो है वो नर नारायण ऋषि है। तो उसका एक और प्रमाण यहाँ मिलता है कि सूत गोस्वामी भी भगवान नारायण को पहले प्रणाम करने को कह रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। पहले यहाँ पर नारायण को प्रणाम करने को कहा, तो ये दूसरा प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत महामुनि कृते जो महामुनि नारायण ही है। यहाँ पर भी सूत गोस्वामी नारायण ऋषि को ही प्रणाम करने को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता है। तो श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक है। जिसको इस संसार से छूटने की इच्छा है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अगर रखते हैं तो उनको भागवत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अगर नहीं रखते तब तो अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अगर लेकिन जिसको वास्तव में संसार से पार करना है, इसी जन्म में इस भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के धाम में जाने की इच्छा है, तो उनको श्रीमद् भागवत के संग में आना चाहिए। संपूर्ण आपने विश्व कहते कि आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण, ये जो प्रश्न किए 6 प्रश्न है, इससे सारे विश्व का कल्याण होगा। ये साधारण प्रश्न नहीं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के संबंधित प्रश्न है। आज हम लोग देखते हैं कि संसार में प्रश्नोत्तर का ही खेल है। जैसे पक्षी भी सुबह उठते हैं, बाहर जाते, सुबह अपने घर से निकलते हैं और प्रश्न उत्तर करते, का चिव 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 करते रहते हैं। वो क्या करते हैं? प्रश्न उत्तर ही करते रहते हैं। फिर अपना अपना दिन भर में ऑफिस का काम कर लेते हैं, दाने वगैरह चूसते हैं और दोबारा लौट आते हैं और वहां पर आगे भी क्या चु 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 करते रहते हैं। तो ये सिर्फ पशुओं की नहीं, हमारी भी यही स्थिति है, मनुष्यों की भी यही स्थिति है। मनुष्य भी जब तक सो नहीं जाता, प्रगाढ़ निद्रा, भागवत कह रहा है कि जब तक निद्रा में सो नहीं जाता तब तक प्रश्नोत्तर ही करता रहता है। व्यापारी बाजार में प्रश्नोत्तर करता रहता है, विद्यार्थी लोग विद्यालय या महाविद्यालय में प्रश्नोत्तर करता रहता है, हम लोग ऑफिस में प्रश्नोत्तर ही करता रहता है, सांसद में सांसद ही प्रश्नोत्तर करता रहता है, प्रेस वाले भी प्रश्नोत्तर ही करता रहता है। प्रेस वाले तो आजकल प्रेस वालों को तो जानते ही है, प्रश्नोत्तर ही करता रहता है। तो इस तरह से जीवन भर वे लोग प्रश्न उत्तर करते रहते हैं और उसके बाद भी रंच मात्र भी उनमें कोई संतुष्टि का अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोग कृष्ण की चर्चा ही नहीं करते, तो उससे लोग संतुष्टि नहीं होते। यदि हमें पूर्ण तुष्टि चाहिए तो हमें कृष्ण विषय चर्चा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण विषय प्रश्नों से भरा हुआ है, इसलिए हमारा जो चर्चा का विषय वो कृष्ण श्री कृष्ण होना चाहिए। इन कैसे होगा? जब भागवत पढ़ेंगे तब होगा, जिज्ञासा आएंगी, डाउट्स आएंगे, तब हम लोग अपने वरिष्ठों से पूछेंगे। लेकिन भागवत पढ़ेंगे नहीं तो भागवत के विषय में प्रश्न आएंगे कहाँ से? प्रश्न तो वही रहेंगे, सांसारिक प्रश्न, और सांसारिक भक्तों के विषय बैठ के भी हम सांसारिक ही चर्चा करेंगे। लेकिन जब भागवत पढ़ेंगे, भागवत के संपर्क में रहेंगे, तब आध्यात्मिक प्रश्न आएंगे। जैसे शौनक आदिऋषि ने प्रश्न किया सुत गोस्वामी को, जैसे विदुर जी ने प्रश्न किया किसको, मैत्रेय जी को प्रश्न किया, महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी को प्रश्न किया, संदेह उत्पन्न हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि शिशुपाल जो एक भगवान की निंदा करने वाला व्यक्ति था, उस जब उसका शरीर छूटा, भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, तो वो उसके शरीर से आत्मा निकली और भगवान में समा गई, लीन हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज अचंभित हो गए, ये कैसे हो गया? तो कौन है ये शिशुपाल जाने के लिए नारद जी से प्रश्न किया। तो जब भागवत पढ़ेंगे तब प्रश्न आएंगे, जब भागवत नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न कैसे आएंगे? और बिना और भागवत नहीं अगर भागवत नहीं पढ़ेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। संसार से जीव को पार पाने के लिए भागवत इस कलयुग में प्रकट हुआ है। अगर उसके संपर्क में ही नहीं रहेंगे तब हमारा उद्धार संभव ही नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदौषजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सब प्रसिद्धति। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो, और भक्ति भी कैसी जो किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय स्वरूप हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है, भक्ति होते ही हृदय में निष्काम ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञान और जो वैराग्य है ये भक्ति के पुत्र है। जहां पर भक्ति रहती है वहां पर स्वाभाविक रूप से ज्ञान रहता, ज्ञान क्योंकि जो ज्ञान है, जो भगवान संबंधित ज्ञान है, वो हृदय से प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। और भगवान के भक्तों के चरित्र सुनकर, भगवान के दिव्य भक्तों के चरित्र सुनकर उन्होंने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया है, जैसे ययाति महाराज है। ययाति महाराज ने पूरा जीवन अपने पत्नियों के साथ व्यतीत किया और सांसारिक कार्यों में लगे रहते थे। लेकिन उन्होंने जब अम्बरीश महाराज चरित्र सुना कि किस तरह से अम्बरीश महाराज ने राजा होते हुए भी, विश्व के सम्राट होते हुए भी, उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को कृष्ण में लगा दिया है, तब ययाति महाराज में वैराग्य आ गया और उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ ले लिया और भगवान को प्राप्त किया। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग न हो तो केवल श्रम ही श्रम है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जो भी है हम लोग, या फिर हम लोग अपने जीवन में भी देख लीजिए, हम लोग अपना स्वधर्म करते रहते हैं। स्त्री अपना स्वधर्म करती है, पति अपना स्वधर्म करता रहता है, माता पिता अपना स्वधर्म करते हैं। यदि इन सारे ये सारे धर्मों का ठीक ठीक पालन किया जाए, लेकिन ये यदि श्री कृष्ण की तरफ केंद्रित नहीं है और उससे कृष्ण की तरफ इनका प्रेम नहीं बढ़ रहा, भगवान के लिए प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो ये सारे व्यर्थ ही व्यर्थ है, वेस्ट है। हमारा हर एक कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा भक्ति हो, चेतना चेतना ऐसी होनी चाहिए। हर एक कार्य कृष्ण कृष्ण को कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य कर, लेकिन वो इसलिए करे क्योंकि वो कृष्ण जिससे, क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न हो, तब ये कृष्ण कॉन्शियसनेस कहलाएगा। तब हमारे हर एक एक्टिविटी कृष्ण भावना भावित होगी, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। अदर अन्यथा वो केवल श्रम ही श्रम है। जिस तरह से वो भूसे को कूटा जाए और उससे अगर चावल निकालने का प्रयास किया जाए तो वो श्रम है, व्यर्थ है। वो कितना भी प्रयास ही उससे चावल निकलने वाला नहीं है, लाख प्रयास कर लीजिए क्योंकि उसमें से ऑलरेडी चावल निकल चुका है। उसमें आप खूब कूटिए, कुछ निकलने वाला नहीं है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म का फल मोक्ष है, अर्थात मोक्ष अर्थात मुक्ति भवा, इस संसार बंधन से मुक्ति। लेकिन धर्म का सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। ऐसा नहीं कि धर्म अर्थ प्राप्त, क्योंकि आज हम लोग धर्म किस लिए करते हैं, भौतिक सुख के लिए करते हैं कि हमें प्रभु हमें कुछ चाहिए, प्रभु मुझे इससे कुछ चाहिए, भौतिक चीज के लिए करते हैं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, इसलिए हम लोग धर्म करते हैं। सांसारिक लोगों की बात कर रहा हूँ, इसलिए अगर हम लोग भक्तों में भी लालसा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान मुझे लालन पालन करेंगे, भगवान मुझे मेंटेन, भगवान ये देंगे, भगवान वो देंगे, तो इस तरह की धारणा होती है। तो धर्म का, और यदि अर्थ है भी तो अर्थ किसके लिए होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए। अर्थ है तो किसके लिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए, कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। अर्थ का फल ये नहीं है कि भोग विलास, ऐसा नहीं कि धन है तो उसको भोगा जाए, उससे भोग समस्त संसारी चीजों को भोगे ना, भोग विलास अर्थ का फल नहीं है। भोग विलास का फल क्या है, इंद्रियों को तृप्त करना, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। लेकिन उसका फल केवल जीवन निर्वाह के लिए होना चाहिए। काम धर्म अर्थ काम, मतलब अगर अर्थ धन है भी तो उससे केवल जीवन निर्वाह जितना हो सके उतना ही ये करे, और बचा हुआ साधुओं के वैष्णव के सेवा में लग जाए या ऐसे जगह पे चला जाए जिससे कि हम लोग उसमें आसक्त ना हो, ये तो विषय के जंजाल में फंसे रहेंगे। तो धर्म अर्थ काम, तो श्रीमद् भागवत कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, कि तुष्टि वही तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण तो आवश्यक है, उतना ही करना। धन है भी, पैसा है भी, एक्स्ट्रा आ भी रहा है तो उतना ही करो जिससे कि आत्म संरक्षण अर्थात शरीर चलाने के लिए आवश्यक है, जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक है उतना ही धन का उपयोग करो, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा हर एक कार्य एक ही लक्ष्य की तरफ होना चाहिए कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। इसलिए हमारे सारे कार्य, सारे दिन से लेके रात को सोने तक, हमें जो भी दिन भर कार्य करते हैं, इसका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। कार्य कोई भी करे लेकिन हमें चेतना ये होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। किसी तरह से ये भौतिक कार्य से जितना लिमिटेड संपर्क में रहे और बचा हुआ समय भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाए। तो यदि जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है, यदि जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है और वास्तविक सत्य को जानने के लिए है, तो वास्तविक सत्य क्या है, तो सुत गोस्वामी अगले श्लोक में बताते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्यते। ये तो हम लोगों ने हमारे इनिशियल हमारे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के पहले के इसमें पहले के शुरुआती दिनों में हमने ये श्लोक हमने बहुत सुना है और एक उदाहरण भी बहुत सुना है कि परम सत्य को जानने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं जो उपनिषदों के जिज्ञासु लोग होते हैं वो भगवान को निर्विशेष रूप से देखते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वे लोग भगवान को परमात्मा रूप से देखते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान को भगवान के रूप में ही देखते हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत बड़े उदाहरण दिए हैं लोगों को समझाने के लिए। हमने शुरुआत के प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे तो उसमें ये श्लोक बताते थे, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि मान लीजिए सूर्य है, तो सूरज की जो किरणें हैं, ये हमारा सूरज को हम जब देखते हैं तो जो पहले का जो हमारा जो विजन है, फर्स्ट तीन कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं। एक सूर्य को देखता बोलते हैं सूरज कैसा है, सूरज की मात्र किरणें हैं। दूसरा जो प्रकार का जो विद्यार्थी है वो सूरज को देखे बोलते नहीं सूरज की तो किरणें भी है और सूरज गोल है। तीसरा जो विद्यार्थी है वो बोलता है कि उसको ज्यादा जानकारी होती है, वो बोलता है कि सूरज की किरणें भी है, सूरज गोल भी और सूर्य देव भी है। तो उसी तरह से जो तत्व ज्ञानी लोग होते हैं वे लोग भगवान को तीन प्रकार से देखते हैं और तीनों भगवान के ही स्वरूप, तत्वता एक ही स्वरूप के भगवान के ही ये सब कुछ है। जिस तरह से बल्ब है तो बल्ब का प्रकाश आ रहा है ना, तो ये जो ब्रह्म ज्योति है ये भगवान का ही तेज है। ब्रह्म ज्योति दूसरा कुछ नहीं है, भगवान का जो शरीर है जो प्रकाश निकलता है वही ब्रह्म ज्योति है। लेकिन जो भगवान के साकार स्वरूप को न जानने वाले लोग या ब्रह्मवादी लोग होते हैं वे लोग केवल उसको देख के ही संतुष्ट हो जाते हैं। मुनि जो ऐसे मुनि होते हैं जो भगवान भक्ति करना चाहते हैं वे लोग भगवान की भक्ति करके भगवान को समझ लेते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो उनके लिए अंडर भगवान का अंडरस्टैंडिंग सीमित है, और जो उनके नीचे रहते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग और सीमित है। तो शौनक आदि ऋषि अशोक गोस्वामी कहते हैं यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। हमारे वर्ण और आश्रम चार ही वर्णाश्रमी यदि कृष्ण ना ही बजे स्व कर्म करिते रौरव पड़ी मजे। यदि ब्राह्मण है लेकिन उसका यदि ब्राह्मण है और उसने अपने ब्राह्मण जो उसका कर्तव्य अच्छे से पालन किया, क्षत्रिय ने उसने अपने पूरे जीवन भर में अपना क्षत्रिय धर्म अच्छे से पालन किया, वैश्य ने अपना वैश्य का धर्म अच्छे से पालन किया, शूद्र ने अपना शूद्र का धर्म पालन किया, लेकिन यदि अपने धर्मों का पालन करते हुए यदि उसने कृष्ण की भक्ति नहीं की है तो उसका शरीर छूटने के समय यमराज जी आने वाले उसको लेने के लिए। यही कहा गया है। तो सारे कार्य सारा सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है ये दिया गया है। तो सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्ण और चार आश्रम में है, जैसे हमें बताया कि चार वर्ण है ब्रह्मचारी क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो सुसंस्कृत अगर हमें सुसंस्कृत जीवन चाहिए तो समाज को विभाजन करना बहुत आवश्यक है। अगर ये विभाजन हम लोग नहीं करेंगे तो जो संसार है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए स्वभाव अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, हमारे स्वभाव के अनुसार। जैसे एक साधारण उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि हमें नौकरी करनी है लेकिन वो नौकरी हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है तो हम लोग उसमें दुखी रहेंगे। कोई भी कार्य हमें करना है यदि हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं है तो हम लोग दुखी रहेंगे वो कार्य करते हुए, लेकिन वही अगर हमारे स्वभाव के अनुकूल हमें वो कार्य सौंपा जाए तो हम लोग उसमें सुखी हो जाएंगे और वो कार्य आनंद से करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे। जैसे कोई जिसको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, उसको यदि आप प्रोग्रामिंग करने में लगा देंगे दुखी हो जाएगा। अगर उसको 12-12 घंटे अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठाएंगे तो बेचारा दुखी हो जाएगा क्योंकि उसके स्वभाव में वो नहीं है, उसके स्वभाव में होगी वो पढ़ा है, दुखी हो जाएगा। तो उसी तरह से वर्णार आश्रम की चरम सिद्धि यही है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करें। तो पहली बात तो हमारे स्वभाव अनुसार हमें कार्य करना चाहिए और जो भी कार्य करें उसको कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो नित्य और इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण आराधना करनी चाहिए और उन कार्यों करते करते सबसे भगवान को प्रसन्न करने का या भगवान की भक्ति प्राप्त करने का जो सबसे आसान तरीका वो क्या है, भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण। और कोई उपाय नहीं है, इस युग में भगवान को प्राप्त करने का सहज उपाय है कि भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करो और कुछ नहीं है। अधिक से अधिक प्रयास करो कि श्रवण करो, भागवत को अधिक से अधिक पढ़ो और उसे कीर्तन करो। ये कार्य करने से स्मरण होगा भगवान का, भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा और जब भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा तब क्या होगा, हमारी हमारी जो कर्मों की गांठ है वो बड़ी कठिन गांठ है, वो खत्म कट जाएगी। वो भगवान का स्मरण होते ही भगवान हमारी जो वासनाएं है, देखिए कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान जो साधु लोग रहते हैं, बड़े बड़े साधु लोग, वो लोग भगवान के दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं और चिंतन के माध्यम से वे लोग उस तलवार है उसको तलवार बोला है उससे वो अपना कर्म बंधन काट के फेंक देते हैं। कितना सुगम उपाय, भगवान के गुणों को सुनना, उसको अध्ययन करना, उसको कीर्तन करना और उसका स्मरण कर, ये इन कार्यों से हम लोग अपना कर्म बंधन खत्म कर सकते हैं। वास्तव मुक्ति का अर्थ ये होता है कि इस संसार बंधन को खत्म करके भगवान के धाम में जाना, भगवान का पार्षद बनना, ये है वास्तविक मुक्ति। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के ब्रह्म ज्योति में मर जाना। मुक्ति का अर्थ ये भी है शास्त्र में कि इस संसार बंधन से मुक्त होकर जीव भगवान का पार्षद बन जाता है, ये है वास्तविक मुक्ति जीव की। वो संसार बंधन से मुक्त होना ये वास्तविक मुक्ति है। और ऐसा क्या है भगवान की लीलाओं में कि उसको सुनने से जीव मुक्त हो जाता है, ऐसा क्या है कि भगवान की जो लीला है वो अप्राकृत है, भौतिक नहीं है। एक साधारण फिल्म स्टार के जो उसके जीव फिल्म स्टार के जीवन में जो होता है, अगर आप उससे सुनेंगे तो उसके जो जीव वो जो पाप कार्य कर रहा है उसकी चर्चा अगर हम लोग करेंगे तो उसका जो पाप है उसका हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। हम लोग उसके पाप में सहायता करेंगे। यदि हम लोग किसी के पाप की चर्चा भी करते हैं तो उस पाप कार्य में हम लोग उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। यदि हम ये मूवीज देखते हैं तो यदि ये तो पाप करते हैं मूवी में, तो कोई वही जो पिक्चर है ऐसा पाप कार्य है। कोई किसकी स्त्री है, कोई किसका पुरुष है, दोनों आते हैं और वो पता नहीं उन लोगों की, और कुछ समय तक वो लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे शारीरिक संबंध होता है, ये होता है वो होता है और इस तरह से वो लोग एक पाप कर रहे हैं और हम लोग उस वस्तु को देखकर हमारा चित हम कुछ समय तक उसको फॉलो करने लगते हैं, हमारा चित उनको ग्रहण करता है और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। हम लोग ग्रहण करते हैं उस चीज को, विषय है, वो विषय वस्तु है, उसको देखकर हमारा चित उसको ग्रहण करता है और हम लोग भी आसक्त हो जाते हैं। टीवी देखना ये सब चीज से एकदम कि ये सब पाप कर है, इसमें हम लोग ये सब अगर वो ये सब चीज को फॉलो करेंगे तो हम लोग उसी में रचे पचे रहेंगे, हमारा स्वभाव भी वैसे ही रहेगा, कृष्ण की तरफ नहीं जाएगा, चित कृष्ण की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इससे निकलने का उपाय क्या है, अगर मान लीजिए इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं, फंसे हुए हैं हम लोग इस तरह से, इसका उपाय है भगवान के गुणों का, भगवान के गुण रूप लीला आदि का अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन किया जाए, अधिक से अधिक प्रवचन को सुने, अधिक से अधिक भागवत पढ़े, अधिक से अधिक कीर्तन करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, क्योंकि ये भगवान के जो चरित्र है वो दिव्य प्राकृत है, प्राकृत जगत का नहीं है, तो हम लोग उसके संपर्क में आ जाने से हम लोग भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसेंड करेंगे इस ये जो प्रकृति गुणों के कारण जो हमारा स्थिति जो हो गई उससे हम लोग परे हो जाएंगे, भगवान के संपर्क, भगवान के गुणों के संपर्क में रहने से हम लोग इसको पार कर जाएंगे। आध्यात्मिक बन जाएंगे, बद्ध जीव हम लोग, बद्ध जीव है लेकिन हम लोग भी क्या करेंगे, आध्यात्मिक बन जाएंगे। और जो भक्तों के चरित्र हम लोग सुन रहे हैं, जो भागवत में जो भक्तों के चरित्र रखे गए, उनको जब हम सुनेंगे उनके दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। भागवत को सुनना, इस भागवत को सुनने से भगवान के, देवताओं के, या जो भक्तों के चरित्र भागवत में रखे गए उनको बारंबार सुनने से उन भक्तों का स्वभाव हमें प्राप्त हो जाएगा, एक लालसा बन जाएगी भागवत सुनने से। कब मैं, जिस तरह से ययाति महाराज ने अमरीश महाराज को सुनकर जैसे उन्हें वैराग्य आया, कब मेरी स्थिति ऐसी होगी, कब मुझे कृष्ण में प्रेम होगा, ये लालसा आएगी कब? भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भक्तों के चरित्र को सुनेंगे, तो जैसे उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया है वैसे हमारी भी लालसा बन जाएगी, हमें भी कृष्ण को प्राप्त करना है। या तो ये मूवीज देखेंगे, टीवी सीरियल्स देखेंगे, उससे कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं, उससे केवल कर्म बंधन ही बढ़ेगा, संसार में आसक्ति बढ़ेगी, और अधिक से अधिक हम लोग इस संसार में फंसे रहेंगे। जैसे दलदल में व्यक्ति है और दलदल से निकलने का प्रयास करता है, अपने आप से निकलने का प्रयास करता है तो और फंसते जाता है, तो वही हो रहा है। शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, ऐसी सेवा से वसुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो जो महाभागवत है, महामुनि है, जिनसे कभी कोई पाप हो नहीं सकता, जो 24 घंटे भगवान की लीला कथाओं में रत रहते हैं, ऐसे महान वैष्णव की सेवा करने से क्या होगा, हमें कथा सुनने में रुचि हो जाएगी। तो ऐसे महान वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, तब हमें भागवत सुनने में रुचि होगी। ये उपाय दिया गया है भागवत में, कैसे किसी को रुचि, अगर भागवत सुनने में रुचि नहीं है तो ऐसे महान साधुओं के संग में बैठना चाहिए और उनसे भागवत को सुनना चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करते रहने से हमें भी उनका स्वभाव प्राप्त हो जाएगा, क्या, क्योंकि उन्हें वो कृष्ण से आसक्त है, उनके संपर्क में रहेंगे तो हमें भी वो आसक्ति मिल जाएगी उनकी, उनसे कथा सुनने से, और हमें भी भागवत सुनने में रुचि हो जाएगी। इसलिए उपासित महामुनि, गृहस्थों को चाहिए कि उपास महामुनि उनके संग में जाके उनसे कथा श्रवण करें। जहा साधु तहा कृष्ण तहा वृंदावन, जहाँ साधु है वहां श्री कृष्ण निश्चित है, वहां वृंदावन धाम है। तो ऐसे महाभागवतों की संगति में जिनमें कोई पाप है ही नहीं, ऐसे साधुओं के, महान साधुओं के संपर्क में आने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे मिलेंगे ऐसे महान साधु, जैसे जब भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हृदय में लालसा होनी चाहिए ऐसे साधुओं का संग प्राप्त करने की, तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नहीं तो महान साधुओं में भी हम दोषी देखेंगे। इसलिए रोज जब भी भगवान को प्रणाम करें, भगवान के हृदय में भगवान से ही मांगना चाहिए कि प्रभु हमें आपके शुद्ध वैष्णव की संगति में रखिए हमेशा, और हमें आपके चरणों में प्रेम भक्ति चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति के अलावा, ऐसे महान साधुओं की संगति के अलावा हमारा उद्धार संभव ही नहीं है। उनके संपर्क में आने से ही हमारा उद्धार हो सकता है, इसलिए उनकी संगति प्राप्त करने के लिए हमें रोना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रार्थना करते 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 वो जो लालसा है वो गाढ़ी हो जाएगी, इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि भगवान हृदय में, जो भगवान है वो देखेंगे, अरे वाह, अब इसकी लालसा बढ़ गई है मुझे प्राप्त करने, मेरे साधुओं का संग करने की, तब वो व्यवस्था करके आपको शुद्ध भक्तों की संगति प्रदान करेंगे, और उनके मार्गदर्शन ने की हुई भक्ति सहज से कृष्ण को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगी। भगवान के धाम जाने की इच्छुक लोगों को पहली योग्यता है, क्या पहली योग्यता है, कि वो भगवान के विषय में सुने। अगर भगवान के धाम में किसी को जाने की इच्छा है उसको क्या करना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए, ऐसे महानुभावों से सुनना चाहिए।
कैसे महानुभावों से,
जिनका चित 24 घंटे कृष्ण में लगा हुआ है, जो कभी पाप कर नहीं करते, जो संसार में रहते हैं वे मुक्त है, जिनको माया स्पर्श नहीं कर सकती, माया जिनको छू तक नहीं सकती, ऐसे साधुओं के संपर्क में हमें आने से हमारा उद्धार होगा, अन्यथा नहीं। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु है भद्राणि विदनोते सहत्तमां हृदयंसतो है भद्राणि विदनोते सहत्सताम। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं, जो अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवसेया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नेष्ठिः। हमारे जीवन का अभद्र, अमंगल, दुख सब कब मिटेगा? जब हम नित्यं भागवत सेवा करेंगे, जब हम नित्य दोनों भागवतों की सेवा करेंगे। एक तो श्रीमद भागवत की भी सेवा करने आवश्यक है, उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसको कीर्तन करना, ये भी सेवा है श्रीमद भागवत की। और दूसरा हमारा उद्धार कैसे होगा? भक्त भागवत से, उनके संपर्क में आने से, उनकी कृपा से। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? पवित्र गति भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में स्थायी प्रेम की प्राप्ति होगी, और जब स्थायी प्रेम हमारे हृदय में हो जाएगा, तब हमारा जो स्वाभाविक जो हमारा जो एक स्वभाव बना हुआ है ना, क्या रजोगुण और तमोगुण के वजह से हमारा हमारे हृदय में जो ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजें है ना, ये खत्म हो जाएगी, ये हमें छोड़ के चली जाएंगी और हम लोग सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे। इस तरह से भगवान के प्रेम में इस तरह से जब हम भगवान के प्रेम में भक्ति से जब संसार के समस्त आसक्ति मिट जाएगी, हृदय आनंद से भर जाएगा, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप होने लगेगा। हृदय से भगवान प्रेरित करेंगे, बाहर से साधु रहेंगे, धीरे धीरे करके आप लोग हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हृदय में जैसे श्री कृष्ण सूर्य के समान है, तो मान लीजिए कमरे में अंधेरा है और उस अंधेरे कमरे में यदि स्विच ऑन लाइट आ जाए तो तुरंत अंधेरा गायब। उसी तरह से कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय में उदित होते ही हमारे जीवन का अंधकार, क्या अंधकार है? हमारे हृदय में जो गंदगी है, काम क्रोध मद मोह जो अनर्थ है, उनसे हम निवृत्त हो जाएंगे और उससे हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रति स्थायी प्रेम की हम फिक्स्ड अप हो जाएंगे, हमारा प्रेम उनमें रहेगा और हम उससे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन उस स्टेज तक आने के लिए हमें भागवत या श्रीमद् भागवत की कृपा चाहिए और जो भगवान के जो महान भक्त है, जिनका जो लोग 24 घंटे भगवान का स्मरण में रहते हैं, श्री राधिका माधव योरपार क्या है माधुर्य लीला पुनरुपनानम प्रतीक्षणास्वादन लुलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। 24 घंटे या प्रतीक्षण भगवान के स्मरण में रहते हैं, जो एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलते, ऐसे व्यक्तियों के संग में आकर हमारा उद्धार होगा। गौर कृष्ण महाराज जी उदाहरण देते थे, घर गृहस्थी हमारी जो संसार की जो आसक्ति है ये कैसी है, हमारे हृदय ग्रंथि कैसी है। तो क्लिप आता ना, क्लिप उधरने इन्होंने उदाहरण क्लिप पकड़ के पुणे में उदाहरण दिया था, ये क्लिप आता, क्लिप कैसे रहती है, कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप रहते हैं ना, क्लिप ऐसे मान लीजिए दो क्लिप है, ये हमारी ऐसी आसक्ति है, पति पत्नी ये दोनों मान लीजिए पति पत्नी है, इन दोनों की ऐसी गाढ़ आसक्ति है। मान लीजिए कदाचित यदि पति को वैराग्य आ जाए और पति ने ऐसा कर दिया, हाँ लेकिन फिर भी पत्नी तो उसको पकड़ी हुई है ना, है ना, तो आसक्ति तो बनी हुई है। पति चाह रहा है, पति में अचानक से संगति करने से वैराग्य आ गया, थोड़ा वो हो गया कि भाई अभी अभी मुझे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगना है, लेकिन पत्नी की तो स्थिति वैसे ही है। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक टीम जैसे कार्य करना चाहिए, एकत्रित होकर भागवत को पढ़ना चाहिए। जो भी उनके जीवन में जो भी ऐसे कार्य है जो कृष्ण से दूर ले जाने वाले कार्य है, उनको दोनों को आपस में चर्चा करते हुए वो कार्य नहीं करने चाहिए, और कि ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि कृष्ण प्रेम में वृद्धि हो, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सहायता हो। अगर पति पत्नी दोनों बैठ के अगर टीवी देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, तब तो हो गया, तब तो दोनों पार हो गए। जो हृदय में थोड़ी बहुत भक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कालन विषयों के संपर्क में रहेंगे, धीरे धीरे करके धीरे करते करते वो जाने वाला है। तो भगवान दिव्य भगवान के प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज और तम से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा इन तीन गुणात्मक रूपों से ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, लेकिन उनकी जो माया शक्ति है उनसे जो तीन गुण निकलते हैं, कैसे तीन कौन से गुण है, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के अधीन ये संसार है, और इनके तीन आराध्य देव हैं। सत्व के कौन है,
विष्णु,
रज के कौन है,
ब्रह्मा,
और तमस के
शिव जी है।
लेकिन वास्तव में मनुष्यों का जो उद्धार होता है वो भगवान विष्णु से होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रपण में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम विस्तार है वो है बलदेव जी से आते हैं संकर्षण, संकर्षण से आते हैं नारायण, नारायण से आते हैं द्वितीय संकर्षण, और इन संकर्षण के जो विष्णु स्वरूप है वही पुरुषावतार ग्रहण करते रहते हैं, और शिरोधक्षा के रूप में हरेक हृदय में परमात्मा के रूप से रहते हैं। और जो ब्रह्मा जी है वो रजस के विग्रह है, शिव जी जो है वो तमस के विग्रह है। जब भी क्रिएशन करना होता है तो ब्रह्मा जी की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, और संहार करना होता है
शिव जी की
सहायता से इसका संहार करते हैं। लेकिन इन सब देवताओं ये ब्रह्मा शिव और इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता है, यदि ये सब जीव मिलकर भी एक बद्ध जीव को संसार से पार नहीं करा सकते, संसार से पार करा सकता है केवल भगवान का नाम, भगवान का गुण रूप लीला आदि का वर्णन। ये सारे देवताओं में इतनी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है। जीव का वास्तविक उद्धार केवल भगवान विष्णु या कृष्ण ही कर सकते हैं। हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं, और वो तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आपके हृदय में उनको प्राप्त करने की इच्छा ना हो। वो न्यूट्रल रहेंगे पूरी तरह से, क्योंकि जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो साधारण मनुष्यों को देखिए, भगवान उनकी हर एक चीजों को सैंक्शन करते रहते, कुछ नहीं करते, हृदय में है लेकिन क्या फायदा है उनका, भगवान तो उनके हृदय में भी क्या फायदा क्या है। लेकिन जब ऐसे बद्ध जीव की भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तब वो हृदय में स्थित जो परमात्मा है वो उसकी सहायता करने लगता है, तब तो वो कुछ नहीं करते। जैसे पृथ्वी के विकार जैसे लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है, धुएं से जिस तरह से अग्नि श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि से क्या होता है, अग्नि के द्वारा वेदक तो यज्ञादि द्वारा अग्नि से सद्गति प्राप्त होती है, इसलिए उसी तरह से तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है, और सत्वगुण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उससे भगवान को भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति में सहायता होती है। तो प्राचीन काल में महात्मा लोग क्या करते थे, भगवान विष्णु की आराधना करते थे, और आज भी लोग जो है वो भी अगर उन महात्माओं को फॉलो करे तो अनुसरण करे तो उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पूर्व के आचार्यों ने क्या किया, भगवान के नाम का जप किया, भगवान के गुणों का श्रवण किया, पूरा अपना जीवन श्रवण कीर्तन लगा दिया तो उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। यदि हम लोग भी वैसा करेंगे, हम लोग भी इस स्थिति में भी इस शरीर के साथ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग, जो लोग संसार से पार करना चाहते हैं वे लोग किसी की निंदा नहीं करते। फर्स्ट थिंग, शुद्ध गोस्वामी बताते हैं निंदा तो कभी किसी की नहीं करते, वो किसी में दोष नहीं देखते। भगवान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, शुद्ध गोस्वामी बता रहे क्या, कि वो किसी में दोष ना देखे, किसी की निंदा ना करे। जो लोग संसार सागर से पार पाना चाहते हैं यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष देखते, फिर भी वे लोग किसी देवता की कभी पूजा नहीं करते। वे किसी तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी जो भूत भूत प्रेत लोगों की कभी पूजा नहीं करते, वे केवल भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का ही भजन करते हैं।
निंदा करने वाले भी
निंदा न, वो पहले वो किसी की निंदा नहीं करते,
वो पहला
वो किसी में दोष नहीं,
रिक्विजिट वो है पहला,
वो किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते, और वे कभी रजोगुण और तमोगुण के जो आराध्य देव है उन देवताओं की कभी पूजा नहीं करते। ठीक है, वो केवल किसकी भजन करते, केवल श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। और परंतु जिसका स्वभाव रजोगुण और तमोगुणी है और जो धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं तो उनको करने दीजिए, शुद्ध गोस्वामी करते हैं, क्योंकि उनका और उन भूत प्रेत आदि वालों का स्वभाव एकदम मिलता जुलता है, इसलिए उनको करने दीजिए। भक्त लोग कभी ये सब चक्कर देवताओं के चक्कर में ही पड़ते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, केवल और केवल भगवान विष्णु या कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, किसी देवता की, किसी भूत प्रेत की, पिशाच की, किसी ग्रह आदि की भी पूजा नहीं करते। ये भक्तों में वो अंगूठियां पहनने की बहुत ये रहती है कि ये अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो, ये पहनो, वो पहनो, इससे हम लोग सोचते हैं कि ये ग्रह में बचा लेगा, उसको शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं वे लोग भक्त जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान पर डिपेंड रहते हैं, वे रजोगुण और तमोगुण के अधीन रहने वाले देवताओं की भक्ति नहीं करते। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परा तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वेदों का तात्पर्य कृष्ण में है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण है, योग भी श्री कृष्ण को समझने के लिए ही किया जाता है, समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण ही है, सारे कार्य श्री कृष्ण के लिए है, ज्ञान से भी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। वासुदेवा परा धर्मो, सारे धर्मों के अनुष्ठान श्री कृष्ण के लिए है। वासुदेवा परा गति, और सारी की सारी गतियां वो भी श्री कृष्ण में ही मिलती है, श्री कृष्ण में समा जाती है। श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे हैं, उनकी माया से ही इस संसार की सारे कार्य होते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा जान पड़ता है कि भगवान भी इस माया के अधीन है, माया के अधीन रहते हुए कार्य कर रहे हैं, कुछ लोगों की धारणा हो जाती है। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि ये तीनों गुण यद्यपि उनकी माया से निकले हुए हैं, माया दक्षिण है प्रकृति, लेकिन इसके अध्यक्ष स्वयं श्री कृष्ण है। ये ऐसा कार्य लोगों को या देवताओं को भ्रमित करने के लिए ऐसा प्रति भ्रमित हो जाते हैं वे लोग भगवान के कोई कार्य को देखते हुए, लेकिन ये समझना चाहिए पूरी तरह से हे ऋषियों कि भगवान के सारे कार्य अलौकिक है, दिव्य है, उनका प्राकृत जगत से कोई संबंध नहीं है। माया भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, उनके सारे कार्य अलौकिक है। जैसे ब्रह्मो विमोहन लीला, ब्रह्मो विमोहन लीला में क्या हुआ था, ब्रह्मा जी जो जो जिन्होंने जो दिव्य ज्ञान भगवान से प्राप्त किया, जिनकी जिन्होंने प्रार्थना करने पर भगवान ने अवतार ग्रहण किया, वे भगवान जब ब्रज में लीला कर रहे थे, उस समय जब उन्होंने अघासुर का वध कर दिया तो कुछ देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को बोल दिया कि भगवान नीचे अवतार लिए हैं, उन्होंने अघासुर का वध कर दिया, चलिए जरा उनके और लीला में देखते कि अघासुर का वध कर दिया भगवान, अच्छा। तो उन देवताओं ने कहा कि लेकिन उनकी लीलाएं थोड़ी विचित्र है, अच्छा क्या करते हैं, चलो देखते हैं। तो जो भगवान भगवान की दिव्य लीलाओं को देखने के लिए जब ब्रह्मा आदि लोग आए वहां पर, तो भगवान क्या कर रहे थे जानते हैं, भगवान अपने ग्वाल बाल के मुख से, ग्वाल बालों के साथ बैठे हुए थे, ग्वाल बालों के साथ बैठे हुए थे, और वहां पर एक ग्वाल बाल ने भगवान से कहा, भगवान कृष्ण ये जो है वो बहुत स्वादिष्ट है, ये जो मिठाई है बहुत स्वादिष्ट है, तुम इसको खा लो। तो कृष्ण ने वो उसके सखा के मुख में मिठाई थी, भगवान ने उसके पप्पी ने मुख को मुख जोड़कर उसके मुख से वो निकाली और खाई, और ये ऊपर से ब्रह्मा जी ने देख लिया। फिर ब्रह्मा जी ने देख लिया कि और झूठो और भी इस तरह से कार्य कर रहे हैं और दूसरों के मुख से झूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसे भगवान हो सकता है, देखिए ब्रह्मा जिसके चार मुख है, जो हमारे परम पिता है, वे भ्रमित हो गए। और उन्होंने फिर कहा कि चलो टेस्ट करता हूं इनको। तो इन्होंने पहले भगवान के ग्वाल बछड़ों को चुरा लिया, फिर जब भगवान उनको खोजने के लिए गए तो ग्वाल बालों को चुरा लिया। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, यदि ये भगवान है तो ये पहचान जाएगा, लेकिन भगवान भी अपना कार्य करना चाहते हैं। भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया और ब्रज के जितने सारे वात्सल्य वाली जो गोपियां हैं उनका दूध पिया, बछड़े बनकर गायों का दूध पिया, और जितने सारे माताएं जिनको इच्छा थी कृष्ण को दूध पिलाने की, उनकी इच्छा को पूरा किया। एक साल तक सारे ब्रजमंडल में भगवान हजारों लाखों रूप धारण करके घूमते थे। तो जब ब्रह्मा जी ये सब अपना कांड करके जब आ रहे थे, जब लौट पड़े, तो ब्रह्मा जी तो क्षण भर में आ गए, लेकिन यहाँ पर एक साल बीत गया, और विचार करने लगे कि चलो जरा देखते हैं कृष्ण की वहां पर क्या स्थिति हो गई, अपने आप को भगवान बोलते हैं, देखते हैं अघासुर का वध कर लिया, देखते हैं क्या होता है। तो वहां पर गए तो सीन एज इट इज था, सारे ग्वाल बाल वैसे ही है, भगवान वैसे ही खा रहे हैं, वैसी झूठा दूसरों के हाथ मुख से निकाल के खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये क्या हो गया, ये असली है वो असली है, जो मैंने रखे वो असली है कि ये असली है। तो ब्रह्मा जी एकदम डिस्टर्ब हो गए। तो ब्रह्मा जी का डिस्टर्बेंस देख के भगवान ने किया कि ठीक है, अब ये समय इसको मैं अपना वास्तविक रूप दिखाना चाहता हूँ। तो जितने सारे ग्वाल बाल थे, जितने सारे बछड़े थे, सब विष्णु स्वरूप में हो गए,
चित्रभुजधारी,
और हरेक विष्णु स्वरूप की सेवा में ब्रह्मा शिव सारे देवता उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी आरती कर रहे थे। ये जब हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा ने देखा तब उनका माथा चकरा गया।
चार माथे
हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा।
तो हम लोग वास्तव में हम लोग की भी यही स्थिति है। हम लोग साधुओं को साधुओं में दोष देखते हैं। हम लोग की यही स्थिति है। हम पर कृपा क्यों नहीं होती भगवान की, क्योंकि हम लोग साधुओं के कार्य में दोष देखते आ रहे हैं, उनको साधारण समझते हैं। वो भगवान के प्रेमी भक्त है, वो भगवान जब, लेकिन हम लोग यदि उनमें दोष देखेंगे तो हमारा उद्धार कभी संभव नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। तो भौतिक जगत के तीनों गुणों में प्रभावित होते हुए जीवों में भौतिक जगत में जितने सारे जीव हैं वो कैसे हैं, वो तीनों गुणों के अधीन कार्य करते हैं। और उनके हृदय में भगवान परमात्मा रूप से रहता है और उनको प्रेरित करता रहता है कि कार्य करो कार्य करो कार्य करो। इसलिए परमात्मा रूप से भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह से व्याप्त है जिस तरह से कास्ट के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इसी प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। हम लोग कहते ना कि भगवान सब जगह व्याप्त है, तो इस प्रकार से व्याप्त है, हर एक हृदय में है, हर एक वस्तु में है, तो इस तरह से व्याप्त है। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवता मनुष्य तथा निम्न पशुओं में अवस्थित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वाले वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर आना लीला करना उनका मुख्य उद्देश्य है कि बद्ध जीवों को आकर्षित करना, क्योंकि हम लोग सब संसार में है, संसार में संसारिक कार्यों में संसारिक जड़े 2400 घंटा लिपटे हुए हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो जब भगवान आते हैं अवतार करते हैं लीला करते हैं, तो उन लीलाओं को देख कर जीव उनसे आकर्षित हो जाता है। भगवान तो लीला करके चले गए लेकिन भागवत तो है ना, तो साधु लोग भागवत की कथा करते हैं, और भागवत की कथा करने से वही कार्य होता है जो वही कार्य भगवान का साधु लोग भी वही करते हैं जो भगवान करते हैं। साधु लोग भगवान की कथाओं को गाते हैं और बद्ध जीवों को कृष्ण की तरफ आकर्षित करते हैं। तो भगवान कृष्ण जी जब अवतार ग्रहण करते हैं उनका भी यही प्रयोजन होता है कि बद्ध जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करें, जीव उनसे प्रेम करना सीखे। जब तक जीव भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं सुनेगा उनसे प्रेम नहीं करेगा। भगवान चाहते हैं कि जीव मुझे अपना स्वामी माने, मुझे अपना पुत्र माने, मुझे अपना सखा माने, मुझे अपना पति माने। कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग उनसे इस तरह संबंध की स्थापना करें, इसलिए तो वे अवतार ग्रहण करते हैं और अपनी विविध लीलाएं करते हैं ताकि हम लोग उसको सुने। और हम लोग भी जिस तरह से माँ यशोदा ने कृष्ण से प्रेम किया है, जिस तरह सुबल सिद्धामा आदि ने कृष्ण से प्रेम किया, जिस तरह से गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, तो उनकी कथाओं को बार बार सुनने से हम लोग भी उसी तरह से उन ब्रजवासियों के अनुगत रहते हुए उनको फॉलो करते हुए हम उसी तरह से उनसे प्रेम करना सीखें। इसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो अधिक से अधिक हमारा जीवन का जो समय है वो भागवत के संपर्क में रहना चाहिए। प्रयास हो कि पति पत्नी या कुछ भक्त लोग एकत्रित होके थोड़ा समय दिन में एक 15-20 मिनट भी आधा घंटा बैठ के भागवत पढ़े और भागवत की चर्चा करें। इससे और प्रयास करना चाहिए कि टीवी मूवीज और ये सब कार्य ना करें, क्योंकि हम लोग भक्त हैं, हम समझ रहे हैं कि हमारा जीवन है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। यदि हम लोग भी भक्ति करते हुए भी ये सब इंद्रिय तृप्ति कार्य करेंगे, धीरे धीरे भक्ति देवी हमारे हृदय से चली जाएंगी। हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे लेकिन जब चली जाएगी तब हमें पता चलेगा अरे, तो क्योंकि जब वो हमारे पास है तब हम उनकी कीमत नहीं करते, भक्ति शिथिल हो जाएगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।